ओम शांति। चलो मुसाफिर अपना घर कहां पर? परमधाम। जो कल तक था अपना वो अब पूरा वो सब हुआ सपना। हम सब जानते हैं अभी जो समय है वापस लौटने का समय है। आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हें सच्चा गाइड मिला है घर का रास्ता दिखाने के लिए, इसलिए तुम्हें देह से देके सर्व सौंदों को पुरानी दुनिया को त्याग, मुझे एक बाप को याद करना है। क्योंकि वापस लौटना है तो उसकी कंडीशन है, लौटना तो सभी को ही है लेकिन कोई किस तरीके से लौटेगा कोई किस तरीके से लौटेगा। तो हम सबको कौन से तरीके से लौटना है ये हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। क्योंकि लंबे समय के इस ब्राह्मण सफर में जो भी हमने अनेक प्रकार की साधनाएं की हैं, उन साधनाओं का परिणाम सुखद हो जो बाबा चाहते हैं, उसके लिए पल पल अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता है। कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये ब्राह्मण जीवन भी ऐसे ही है। अगर थोड़ी सी भी सावधानी हट जाती है तो हमारे पग जो पुरुषार्थ पर तेज कदम चल रहे थे धीरे धीरे लड़खड़ाने लगते हैं। तो अटेंशन और चेकिंग, ये मुख्य दो चीजें ऐसी हैं जो ब्राह्मण जीवन में निरंतर हमारे सामने रहनी चाहिए। स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन और स्वयं की चेकिंग। दूसरों की चेकिंग करना आसान होता है लेकिन स्वयं की चेकिंग करना मुश्किल होता है, महीन चेकिंग है। हम सब जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, माया जीत बनने का पुरुषार्थ करते हैं या बाबा से योग सहज लगा रहे उसकी अनेक प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं इस जीवन में सदा निरंतर खुशी बनी रहे, हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल सही रूप से चलता रहे, जीवन में कोई विघ्न ना आए, अगर विघ्न आए भी तो सहज टल जाए, ये हम सबकी मंशा रहती है। इसलिए बाबा ने हम सबको अनेक प्रकार की युक्तियां दी हैं कि इस ब्राह्मण जीवन का हम यथार्थ फायदा कैसे लें, यथार्थ साधना कैसे करें। अनेक प्रकार की बाबा ने युक्तियां बताई हैं। आज के वरदान में था कि इस जीवन में कौन सी एक चीज की बहुत आवश्यकता है, हिम्मत। ये भी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जैसे पवित्रता को फाउंडेशन कहा जाता है उसी तरह हिम्मत भी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जब तक हिम्मत नहीं है तब तक बाबा मदद देगा लेकिन मदद अनुभूति भी नहीं होगी, इसलिए हिम्मत बहुत आवश्यक है। जितना जितना हम इस ज्ञान को, ज्ञान की गुहेता को समझते जाते हैं तो स्वयं को ही पता चलता है कि हमारे में कितने प्रकार की कमी कमजोरियां भी अभी बाकी हैं। सहज रूप से तो हम आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन जो सूक्ष्म कमी कमजोरियां जो बाबा कहते स्वप्न में भी देह याद ना आए, विकारों की तो बात दूर लेकिन स्वप्न में भी ये याद ना आए कि भाई की स्मृति ना आए स्वप्न में भी, तो ये जो ब्राह्मण जीवन का जो शुरुआती दौर होता है उसमें बातें थोड़ा नहीं पता होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस ज्ञान की गुह्यता को समझते जाते हैं तो पता चलता है इतना सारा जो पुरुषार्थ किया होता है एक सेकंड से धड़ाम नीचे, क्योंकि एक नया पॉइंट मिला के संकल्प में भी ये देह ना याद आए। अब विकारों की तो बात ही छोड़िए, देह के संबंधी कितनी सारी बातें याद आती हैं, अगर जागृत अवस्था में वो याद आ रही है तो स्वप्न में क्या क्या होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जो पहला फाउंडेशन हिम्मत है, कौन कौन सी बातों में हमको हिम्मत रखनी है, अर्थात हिम्मत नहीं हारनी है, कौन कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जहां हमको बहुत हिम्मत रखने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हमको इस पुरुषार्थी मार्ग में हिम्मत रखने की जरूरत है। सबसे पहला पाठ कौन सा, कौन सा सबसे पहला पाठ? आत्मा का। अब इसमें लंबे समय से हम प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लंबे समय तक अनुभूति भी नहीं होती है, फिर हम हिम्मत हार जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो लंबे समय की साधना के बाद ही आत्मा की स्मृति रहने के बाद तो उसकी अनुभूति होगी। बहुतों का अनुभव होगा कि जिन्होंने आत्मा के ऊपर लंबे समय से पुरुषार्थ किया है, अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करने की प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, तो धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। और उस रूप में स्थित रहने से बहुत सारी अवस्थाएं सहज अनुभूति होती हैं, क्योंकि वो वास्तव में फाउंडेशन है। वो जैसे कल का स्लोगन था ना, तपस्वी कहाँ बैठता है? हमेशा आसन पर विराजमान रहता है। जब व्यक्ति आसन पर विराजमान रहता है तो सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं उसके दिशा निर्देश अनुसार सहज चलती रहती है। जैसे आसन छोड़ते हैं तो कोई मानता नहीं है। संसार में मिनिस्टर की कब तक मानी जाती है? कोई पद पोजीशन पर होता है तभी उसकी मानते हैं, बाद में उतर गया तो कोई पूछता तक नहीं है। उसी तरह अगर हम स्वयं अपने आसन पर स्थित हैं, बैठे हुए हैं, तो ये जितना भी कर्म क्षेत्र है, जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, जितना भी कर्मेंद्रियों का संसार है, ये स्वतः हमारे अधीन में रहेगा। हमारी आत्मिक स्थिति नहीं है, आत्मिक स्मृति नहीं है, आत्मिक वृत्ति नहीं है, आत्मिक चिंतन नहीं है, आत्मिक दृष्टि नहीं है, तो हम जैसे आसन को छोड़कर देह रूपी सांप को देख रहे हैं। और सांप क्या करेगा? काटेगा। फिर काटने के बाद क्या होगा? मौत। वैसे सभी सांपों के काटने से मौत नहीं होती है, सभी सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन हमारे पुरुषार्थ को खत्म कर देता वो। ये देह रूपी सांप हमारी जो जितनी भी की कमाई होती है वो सारी चट हो जाती है, चट खाते में चली जाती है। तो हम सारे दिन में ये जांच करें कि हम कितना अपने स्वस्वरूप में स्थित हैं। यज्ञ की स्थापना काल में जो दादियों ने अभ्यास किया वो अधिकतर इसी के ऊपर। और सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा को पता, उनको लक्ष्य भी सामने स्पष्ट है, मैं किस सृष्टि का प्रथम महाराज कुमार हूं, फिर भी आत्मा लिखने की क्या जरूरत थी। तो ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया तो हमको कितना करना चाहिए? तो वास्तव में ये एक गुप्त पुरुषार्थ है, सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि लंबे समय तक हम अपने स्व के स्वरूप में स्थित रहें। जब हम स्वयं के स्वरूप में स्थित हैं तो उस अवस्था में आत्मा जो है वो परमात्म प्रेम में ऐसे रस अनुभव करती है, दूसरे रसों की तरफ आकर्षित नहीं होगी फिर। और ये लंबे समय का अभ्यास है, नहीं तो ज्ञान के हिसाब से व्यास तो बन जाते हैं हम, लेकिन अभ्यास नहीं रहा है। इसलिए बाबा ने कहा व्यास नहीं बनो, अभ्यास करो, पल पल अभ्यास करो, सेकंड सेकंड, क्योंकि समय बहुत अनमोल है। समय पुकार रहा है ना, समय क्या पुकार रहा है? हमें हमारी संपूर्णता भी पुकार रही है। समय कौन सा चल रहा है? हाथ से निकला जा रहा है, दौड़ा जा रहा है समय। तो हम उस समय को कौन कौन से अभ्यास में सफल कर रहे हैं? कहीं दूसरे दूसरे अभ्यास में तो नहीं सफल कर रहे हैं? कहीं टेक्नोलॉजी को सीखने में के अभ्यास में तो नहीं लगे हुए हैं? तो अंदर की जो आत्मा की टेक्नोलॉजी है उस अभ्यास में हम कितना स्थित हैं? कितना समय तक ये आंखें अंदर की तरफ झांकती हैं या बाहर की तरफ झांकती हैं? इन आंखों से हम क्या क्या देख रहे हैं? इन आंखों से हम क्या क्या खा भी रहे हैं। आंखें ग्रहण भी तो बहुत करती है ना, मन तो बाद में देखेगा लेकिन पहले आंखें देख रही हैं सारा। कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मन बाद में सोचता है लेकिन पहले आंखें हैं। भले वो मन के अंदर वो वृत्तियां बैठी हैं लेकिन वो मनोवृत्तियां इन कर्मेंद्रियों के ऊपर ऐसे चिपक गई हुई है कि पहले वो ही ग्रहण कर लेती हैं और मन के अंदर वो और रिकॉर्डिंग हो जाती है और मन में अंदर और गहरी छाप लग जाती है। तो इसलिए अपनी मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए बार बार आत्मिक वृत्ति का अभ्यास, इसमें हिम्मत चाहिए, इसमें डिसहार्टेड नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। जितना हम इसको पक्का कर जाएंगे हमारा पुरुषार्थ का मार्ग बहुत सहज होता जाएगा। ये हमारे जीवन का फाउंडेशन है और अंतिम पेपर भी यही है, लास्ट में एक सेकंड में शरीर से डिटैच। तो लंबे समय तक हम शरीर से डिटैच होने का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी स्थिति बेहतर बनेगी। कितना समय हम साक्षी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ये कम लिस्ट बना सकते हैं कि हमको सारे दिन में या इस ब्राह्मण लाइफ में अभी तक हमने कौन कौन सा पुरुषार्थ किया है, कौन कौन सा पुरुषार्थ करना है, कि क्या मैंने इस देह से न्यारे होने का अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर लिया है, क्या मैंने एक सेकंड में इस शरीर अलग में आत्मा अलग इस प्रैक्टिस में पारंगत बन गया हूं या इससे भी अभी कोसों दूर हूं। चिंतन करने के पुरुषार्थ में हम आगे बढ़े हैं, जो भी हमारे अंदर विकार भरे हुए हैं उनसे हमने मुक्ति पाली है, वो हमने पुरुषार्थ कर लिया है। बाबा का अच्छी तरह परिचय देने के लिए हम अच्छी तरह उसमें निपुण हो गए हैं, साक्षी दृष्टा स्थिति का पुरुषार्थ कर लिया है, देही विदेही स्थिति का पुरुषार्थ कर लिया है, कर्मातीत स्थिति क्या होती है उसका पुरुषार्थ कर लिया है। तो कौन कौन सा पुरुषार्थ करना है ये हमको अपने खुद ही एक सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है और रोज उनको दोहराते रहना है, क्योंकि दोहराते रहेंगे तो मन में वही संकल्प चलते रहेंगे। इसलिए कुछ दिन पहले एक स्लोगन था ना, मन में शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा कर लो तो वही संकल्प चलेंगे जिसमें स्वयं का कल्याण होगा और औरों का भी कल्याण होगा, क्योंकि संकल्प ही हमारा फाउंडेशन है। संकल्प बहुत बड़ा खजाना है जो बाबा ने हमको खजाने दिए, अनेक प्रकार के खजाने, लेकिन मुख्य रूप से जो बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, तो ये क्या हमारे पास ये खजाने अंदर में है या खाली है या लॉकर के अंदर बंद ही करके रखे हुए हैं? क्या हम उनको बांट रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? कौन कौन से ज्ञान के बिंदु हमारे पास हैं, कौन कौन से गुण हमने अपने आप को उन गुणों से श्रृंगार कर लिया है? तो ये सारी सोचने विषय हैं जो हमें स्वयं प्रति सजग रहकर बड़े गंभीरता से, बड़े सूक्ष्म रूप से, स्वयं के प्रति पूरी निष्ठा से, पूरी आस्था से, आत्मविश्वास से इसमें पारंगत बनना है, क्योंकि अंत में हमारा अपना ही पुरुषार्थ जाएगा। अगर हम अनेक प्रकार के क्लासेस सुनते भी हैं तो अपने को आगे बढ़ाने के लिए सुन रहे हैं और वही हमारे साथ में लास्ट में जाएगा और साथ में कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने अनेक खजानों का भार दिया है। इतनी सारी ढेरों मुरलियां हैं, वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस हैं, वरिष्ठ भाइयों की तरफ से लिटरेचर जो है अनेक प्रकार का प्रकाशन हुआ है, तो ये सारे हमारी चढ़ती कला के लिए है। तो हमको आत्मनिर्भर बनना, आत्मचिंतन के लिए आत्मनिर्भर, स्वयं के चिंतन को प्रखर करना है। हमको रुक नहीं जाना है कि हमको बस इतना चिंतन तो हो गया है, थोड़े समय तक तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, कभी कभी हो जाता है तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ठहर नहीं जाना है। हमेशा पुरुषार्थ के प्रति सजगता जरूरी है, कि अगर हमारे कदम रुक जाते हैं तो जीवन में फिर उमंग उत्साह नहीं कायम रहेगा, उदासी, निराश, हताश हो जाएंगे। तो इस प्रति सजग रहना है, जो भी हमारे पास टाइम है, जैसे भी भट्टी में समझ लिए मधुबन आए हैं, तो जितना हमारे पास टाइम रहा अगर हमने वो टाइम सफल किया होगा तो यहां से जाने के बाद भी वो नशा और खुशी सदा कायम रहेगा। अगर यहां रह के भी हम उस समय को सफल नहीं कर पा रहे हैं तो यहां से जाने के बाद भी हमारी स्थिति वैसी हलचल में होती रहेगी। वरदान भूमि में बैठकर अगर हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं इस चरित्र भूमि पर जो ब्रह्मा की कर्म भूमि है जहां वरदानों की निरंतर बरसात होती रहती है, इस बरसात में ही हम नहीं भीग रहे हैं तो फिर बाहर जाके क्या होगा जहां निरंतर बरसात वरदानों की बौछार हो रही है। तो जो हमारे समय है, जो हमारे पास लक्ष्य है, उद्देश्य है, गोल है, उसके अनुरूप हमारा पुरुषार्थ पहले से उसका प्लान और प्रैक्टिकल प्लान यथार्थ रीति से बना होगा तो प्रैक्टिकल में भी यथार्थ रूप से कर पाएंगे। अगर हमारे प्लानिंग ठीक नहीं है, उसमें हलचल है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, किससे पूछ रहे हैं बार बार, तो हमारा प्रैक्टिकल में भी ऐसे होगा। इसलिए स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है अपने पुरुषार्थ के प्रति सजग होकर कि सारे दिन में हमको क्या क्या करना है। विशेषकर जो भट्टी में आते हैं या यहां भी जो हमको मौका मिलता पुरुषार्थ करने का, तो पुरुषार्थ की प्लानिंग पहले होनी चाहिए, क्योंकि सारे दिन में कई सारे ऐसे कर्म होते हैं जिनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः चलते हैं। स्नान करने के लिए सोने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कर्म के साथ हमको योग को योग जोड़ देना है। ये जो ब्राह्मण जीवन में केवल परिवर्तन कहां से है, लौकिक से अलौकिकता की ओर, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को अलौकिक कर्म कर देना है। जैसे बाबा ने दिनचर्या दी है सवेरे से लेकर अमृत वेले से रात्रि तक, सवेरे उठना कैसे है, फिर उसके आप पढ़ाई कैसे करनी है, योग कैसे करना है, कर्म क्षेत्र पर सेवा कैसे करनी है, संबंध संपर्क में कैसे आना है, व्यवहारिकता में कैसे आना है, रोज रात को सोते समय कैसे चार्ट लिखना है, बाबा से कैसे रूहान करनी है, वो सारे दिनचर्या हमको बताइए। तो ये सारा बताने के बावजूद भी हम और तरफ से पूछ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं हम उसको छोड़कर कहीं और ध्यान दे रहे हैं। अमृत वेले से लेकर बाबा ने रात्रि दिनचर्या तक पूरी दिनचर्या की पूरी हमको समय सारणी बना के दी हुई है। जैसे बाबा ने कहा अमृत वेले उठते क्या सोचो, मैं इस देह में अवतरित आत्मा हूं, किससे मिलन मनाने जा रही हूं, जो वरदानों का दाता बीज रूप है वो अवतरित हुआ है, जिससे निरंतर वरदान ही मिलते, उसे कुछ दूसरा मिलता नहीं है, उसके पास है ही वरदान, तो वरदान लुटाने के लिए अवतरित हो चुका हुआ है, उससे मिलन मनाने के लिए मेरी अपॉइंटमेंट है। तो शुद्ध संकल्प उमंग उत्साह से हम बाबा से मिलन मनाने के लिए दिनचर्या अनुसार चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वरदान हमारे स्वरूप में आएंगे, नहीं तो खाली आके बिना हम संकल्प किए ऐसे बैठ जाए, ठीक है हम अमृत वेला करने जा रहे हैं, तो उसका रस नहीं आएगा। भले वो टाइम तो हो जाएगा, थोड़ी बहुत अनुभूति भी हो जाएगी, लेकिन निरंतर वो अमृत वेला का एक रस जो हमारे में परिवर्तन दिखाई दे, जिससे वो अनुभूति तभी होगी जब यथार्थ रूप से हमारा पुरुषार्थ होगा। तो उठते ही मैं वरदाता बाप जो बीज रूप है, वरदानों की हमेशा उससे बरसात होती रहती है, वो वरदान निरंतर बरसा रहा है मुझ पर, उससे मैं मिला हूं, वो मेरे लिए इंतजार कर रहा है। फिर कौन कौन से बाबा वरदान दे रहा है, तो मुरली में सारे, ऐसा नहीं कि बाबा मुख से सामने बोलेगा, उस पहले सारा खजाना हमें बुद्धि में रखना पड़ेगा, है ना, कौन कौन से बाबा हमको वरदान दे रहा है, तो अनुभूति करनी है, जैसे बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर के ऊपर रख दिया है और बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे सदा विजयी रत्न भव, आज के वरदान में था ना, जो बच्चे हिम्मत रखते हैं विजय उनकी निश्चित है। तो अगर हिम्मत रख के हम अमृत वेले आएंगे, बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा से वरदान लेंगे और उन वरदानों को बार बार स्मृति में रहेंगे, केवल उसी समय नहीं सारे दिन उनको स्मृति में लाना पड़ेगा, स्मृति से ही समृद्धि आएगी। अगर हमको सवेरे ले और सारे दिन में उस चीज की याद ही नहीं है तो उसका खुशी नशा कैसे रहेगा। मान लो सवेरे हमको कोई 2-4 लाख रुपया दे गया और सारे दिन में, और हमको कहा ये तुमको खर्च करना है ना, और हमको सारे दिन में उसकी याद ही नहीं है, तो उसका नशा खुशी रहेगा, जैसे होते हुए भी नहीं है। तो बाबा सवेरे आके तो हमको वरदानों से भरपूर कर जाते हैं, माला माल कर जाते हैं, लेकिन सारे दिन में उसकी विस्मृति हो जाती है। मुरली का एक एक महावाक्य क्या है, वरदानी तो है ना। आज बाबा की मुरली में बाबा के ऐसे 25 नाम थे, कौन कौन से थे, क्योंकि मुरली को नए तरीके से सुनना है, नहीं तो जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको हम छोड़ते नहीं है, उसी अनुसार चलते रहते हैं। नए तरीके से सुनेंगे, नए दृष्टिकोण से देखेंगे, नवीनता का अनुभव होगा तो जीवन में मुंगतसा रहेगा। रोज रोज आलू आलू खाते रहेंगे तो क्या होगा? अगर आलू को अलग अलग वैरायटी से खाओ तो उसका मजा आता है। तो मुरली को भी नए नए तरीके सुना है, तो आज की मुरली में बाबा के कौन कौन से नए नए नाम थे? थे तो पुराने गाइड और लिबरेटर, दो हुए, बाकी हाँ रचयिता है, बेहद कर चयिता है, सृष्टि कर चयिता है, और तीन चौथा हो गया लिबरेटर, दुख करता सुख करता है, हाँ जी बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बेहद का टीचर, बेहद का फादर माता, हाँ जी बेहद का सतगुरु, और क्रिएटर डायरेक्टर माता पिता परम पिता परमात्मा, ऐसे ही था, और क्या क्या था, हाँ मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, मनुष्य मनुष्य को मनुष्य से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, स्वयं मुक्ति दाता को मुक्ति देने के लिए अवतरित होना पड़ता है, और क्या था, हाँ देवता मनुष्य से देवता बनाने में, और पतित पावन। तो ऐसे 20-22 नाम थे आज की मुरली में। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम देखें तो उसको हमको याद करना भी सहज हो जाएगा और हमारा मन बुद्धि भी एकाग्र होता जाएगा, एकाग्रता हमारी बढ़ती जाएगी। मन को एकाग्र करने का तरीका है ज्ञान का मनन चिंतन। योग भी क्या चीज है, योग में अगर हमारी बुद्धि भटक रही है तो ज्ञान का मनन चिंतन करना उसमें भी, कि बाबा ने मुरली में क्या कहा। योग में मुरली को सामने देखो, कागज नहीं पकड़ने का, योग में सोचिए, दृश्य इमर्ज कीजिए कि सवेरे में मुरली क्लास में कहां बैठा हुआ था, बैठी हुई थी, पहले अपने को बाहर लेके जाना, फिर कौन सुना रहा था, क्या क्या सुना रहे थे, मन बुद्धि बाहर चला जाएगा और बाहर जाने से शरीर अपने आप ही भूल जाएगा क्योंकि हम डिटैच हो गए इस बॉडी से। जैसे बाबा कहते चार धाम की यात्रा करो तो क्या होता है तो हम कहीं भी बैठे हुए हैं, चार धाम तो इधर है लेकिन मन बुद्धि से हम डिटैच हैं, तो ये भी एक अशरीरी अवस्था बनाने के लिए एक सहायक बिंदु है। इस बॉडी में रह के दूसरे स्थान पर सोचना, यहां बैठे हुए हैं लेकिन हमको बाबा के कमरे में योग कर रहे हैं, जैसे बाबा के कमरे में बैठे हुए हैं तो मैं शांति स्तंभ बैठा हुआ, किसी डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो मैं बाबा की झोपड़ी में बैठा हुआ, और ये चीजें देखी है, और जो चीजें हमने देखी है वहां तो जाना सहज होता ना, भले परमधाम नहीं देखा वहां जाना मुश्किल लग रहा है लेकिन ये चीजें तो देखी है ना। और जैसे जैसे हम इस संसार में रहते हुए, इस देह में रहते हुए डिटैच होते जाएंगे तो ऊपर जाना भी आसान हो जाएगा, ऊपर भी मन बुद्धि एकाग्र होना शुरू हो जाएगी आराम से, और जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतना मन शक्तिशाली बनता जाएगा, अनेक प्रकार के विघ्नों को पार करने के तरीके स्वतः आते जाएंगे, मन की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। तो एकमात्र माध्यम है मायाजीत बनने का सहज साधन है मनन चिंतन। मनन चिंतन को हम क्या पका पकाया माल खाना चाहते हैं, अपना नहीं बनाते हैं, क्योंकि राजा लोग है ना, तो राजा लोग तो अपने आप थोड़ा बनाते हैं ना लेकिन कौन से राजे, स्वराज्य अधिकारी बाबा ने कहा, दूसरों पर राज करने वाली नहीं, स्वयं अपनी गोट तो नशा चढ़े, बाबा कहते तो अपनी गोट तो नशा चढ़े। तो ज्ञान के मनन चिंतन को किसी तरीके से बढ़ाना है, कम नहीं करने का। जैसे जैसे ज्ञान का मनन चिंतन बढ़ता जाएगा तो जीवन में रस आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जीवन में नवीनता होना जरूरी है, हिम्मत होना जरूरी है, नवीनता होगी तो मजा आएगा। और आत्मनिर्भरता अर्थात पुरुषार्थ, स्वयं के ऊपर अटेंशन देना है, स्वयं के पुरुषार्थ में एकदम निखार आना चाहिए, दिन प्रतिदिन उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो इसके ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है। और बाबा ने कहा कि अब ये जो समय चल रहा है, समय के हिसाब से हमको क्या क्या पुकार हमारे कानों में, जो बाबा कहते हैं तुम्हें भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती, तो भक्त भी पुकार रहे हैं, समय भी पुकार रहा है, हमारी संपूर्णता आह्वान कर रही है, एडवांस पार्टी देख रही है रहा कि कब तक संपन्न बनेंगे, बाप दादा परमधाम में हमको वेट कर रहे हैं कि कब हम बच्चे पहुंचेंगे, प्रकृति इंतजार कर रही है ना। एक ना बाबा ने 4-5 साल पहले मुरली में कहा था कि समय भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि मेरे रचता कहां तक पहुंचे हैं, समय आगे जा रहा है और रास्ता पीछे है। सुप्रीम अथॉरिटी आज की मुरली में भी था कि बाप सुप्रीम अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, ये भी दो ये बाबा के थे कर्तव्यवाचक नाम है ना। तो अपने ज्ञान के प्रति सजग रहना है। तो बात चल रही थी सवेरे अमृत वेले से बाबा से रूहान करना, स्वयं को फुल चार्ज करना है, खुले दिल से बाबा से बातें करनी है, जो भी मन की बात है ना। फिर अमृत वेले के बाद हमारी दिनचर्या शुरुआत होती है, उसके बाद क्या करते हैं, मुरली, और मुरली से पहले कोई स्नान पानी पहले कर लेता है, स्नान पानी बाद में करते हैं। तो स्नान पानी करते इसमें भी बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे संकल्प दिए हमको, संकल्पों का खजाना दिया, संकल्पों की पूंजी दी है कि क्या क्या सोचना उसमें भी, कि बाबा कहते इस तन के अंदर बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है, कौन सी, आत्मा रूपी मूर्ति है ना। तो आत्मा के अंदर भी उस मूर्ति के ऊपर हम कौन कौन से संकल्पों का भोग लगा रहे हैं, है ना। एक है अशुद्ध भोजन खाते हैं संसार में तामसिक, लेकिन आत्मा को हम कौन सा भोजन खिला रहे हैं। अगर हम देह को देख रहे हैं तो ये मांसाहारी भोजन खिला रहे हैं, विशाला भोजन खिला रहे हैं, और विष वो आत्मा के अंदर जा रहा है धीरे धीरे। फिर कितनी सूक्ष्म बात है। तो सारे दिन में हमारी आत्मिक स्थिति कहां तक रहती है, दिखाई तो दे ही देता है, क्योंकि लंबे समय से तो ये चमड़ी को, चमड़ी की आंखें चमड़ी को देखती रहती हैं, कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है, और वो सारा आत्मा उसी को ग्रहण करती रहती है और फिर बस उसी चिंतन में डूबी रहती है। और उस चिंतन से आज तक हमको क्या मिला, हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं आया, हमारी गिरती के लिए दुर्गति हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं अंदर में जो मूर्ति बैठी है उसके ऊपर शुद्ध संकल्पों का भोग लगाना है, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूं, परमात्म नयनों में समाई हुई आत्मा हूं, है ना, मैं शुद्ध आत्मा हूं, महान आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, भगवान की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो शुद्ध संकल्प ने आप क्रिएट करने हैं, तो उसमें स्थित होते जाएंगे तो आत्मा को जैसे हम श्रृंगार कर रहे हैं, जैसे मूर्ति का श्रृंगार कैसे करते हैं, उसको भक्त लोग भी कितना श्रृंगारते हैं, कितना देख रेख करते हैं उसका, उसका कितना पाठ पूजा करते हैं। तो ये भगवान की दी हुई मूर्ति है और हम इसकी कितनी पाठ पूजा करें अंदर। तो स्वयं के प्रति भी सजग रहना है कि हम अपना श्रृंगार कैसे कर रहे हैं, या दूसरे श्रृंगार तो नहीं करने लगे हुए हैं, पाउडर शोडर लगा के, क्रीम पहनदी पाउडर वगैरह उसी में तो नहीं लगे हुए हैं, कोई सेंटिमेंट मार के, ये श्रृंगार भी बहुत कम करना चाहिए। तो देखते हैं कोई कोई श्रृंगार इतना सेंट मारा होता है पास में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कईयों की इतनी प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो जैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो बीमारियां होती हैं, ऐसे ही आत्मा की प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होनी चाहिए। वो ज्यादा होगी तो हम अनेक प्रकार के संगठन के बीच में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए हमारी स्थिति बेहतर बनती जाएगी। इसलिए बाबा कहते इस देह के अंदर जो मूर्ति बैठी है वो कौन सी मूर्ति है, हमेशा स्मृति में रहे। फिर बाबा कहते बाबा पढ़ाने आते कहां से आते हैं, परम धाम से, इतनी दूर से पढ़ाने आता है, और कितनी ऊंची पढ़ाई है। संसार में बड़े बड़े पढ़ने वाले विद्वान हुए हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, कितनी बड़ी बात है ना। एक बार एक माता जी थे, तो बाबा तो कहते हैं कि माताएं भी कितनी होशियार होती हैं, है ना, बोली वाली माताएं, लेकिन एक ज्ञान जब मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े प्रोफेसर को भी सेकंड में गोल कर देती हैं, है ना। तो एक बार एक माता जी प्रदर्शनी में, ये सत्य घटना है, गाइड कर रहे थे, वहां बहने नहीं थी, माताएं थी, तो प्रदर्शनी देख रहे थे, तो एक कलेक्टर आया वहां, तो कलेक्टर आया तो समझने लगा, तो माता जी ने समझाया ये लक्ष्मी नारायण है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, कल्प वृक्ष है, सीढ़ी का चित्र है, ये सब चीजें, और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो वो कलेक्टर कहता परमात्मा सर्वव्यापी है, वो सिद्ध करना शुरू कर दिया। तो माता जी ने क्या बोला, तो वो सुना दिया। तो माता जी ने, उसने तो एकदम अच्छे कपड़े टाई वाई सूट वूट पहना हुआ था, तो माता जी ने ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर पर देखा, बोलता माता ने बोला लगता तो तुम बड़ा पढ़ा लिखा है लेकिन तुमको इतनी भी समझ नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अब माता जी को क्या पता कलेक्टर आ गया तो बात उसकी लग गई और वो धीरे धीरे ज्ञान में चल पड़ा। बोला इतनी देर से समझा रही हूँ, तुमको इतनी भी समझ नहीं आ रही है, सूट वूट से तो लगता है पढ़ रहा है लिखा ही है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो देखो बाबा कैसी तीर लगाता है, तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं बाबा तो अपना काम करा ही लेगा, लेकिन हमको हर चीज में सेवा के क्षेत्र में जाते तो मना नहीं करना है। एक और चीज विशेषता है, मना नहीं करने का विशेषता है, अपने आप बाबा जहां बिठाएगा अपने आप उभरेगा, क्योंकि कर्तव्य उसका है। अगर हम समझते हैं हमारा कर्तव्य है तो विशेषताएं हमारी दब जाती हैं, जो हमको विशेषताएं देने के लिए वो आ रहा है आगे और हम आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं तो विशेषताएं वहीं के वहीं रह जाएंगी। इसलिए विशेषताओं की तो वो बरसात कर रहा है, और वास्तव में हम सबके अंदर विशेषताएं तो कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि आत्मा संतान किसकी है, तो जो उसके संस्कार है वही तो हमारे है ना, लेकिन स्मृति और विस्मृति का खेल है। अगर हमको उसमें स्मृति है तो हमारी कितनी अच्छी अवस्था होती है, और जब हम ज्ञान से विस्मृत हो जाते हैं तो अवस्था डामाडोल हो जाती है। सारा खेल तो स्मृति और विस्मृति का ही है। तो पढ़ाई पढ़ते समय भी अनेक प्रकार की समर्थ स्मृतियों से बाबा हमको सजाते हैं, कौन कौन की स्मृतियां बाबा ने दी है। जैसे तीन चार दिन से माया के बारे में बाबा ने बहुत सारा कहा है ना, जैसे बाबा कहते हैं जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है, क्योंकि माया भी कम नहीं है, क्योंकि माया से प्यार तो हमने लंबे समय से किया हुआ ना। अब जिससे हमने लंबे समय से प्यार किया है और उसको हम डाइवोर्स दे दें तुरंत तो कितना खराब लगेगा माया को, तो शायद थोड़ा मानेगी वो है ना, तो उसको तलाक देने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए है ना। माया के अनेक, माया कैसे कैसे पकड़ती है ना। तो किसी ने हमको भेजा माया शतकम, उसमें बहुत सारी माया की 100 प्रकार से माया कैसे आ गई, क्या क्या करती है। माया कान कान काट लेती है, माया थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है, माया अजगर हप कर लेता है, माया नाक से पकड़ के घूसा मारती है ना। तो माया के कितने प्रकार के, वो भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। जितनी इस ज्ञान की नॉलेज उतनी माया की भी नॉलेज, क्योंकि बीमारी की नॉलेज नहीं होगी तो बीमारी कभी भी अटैक कर देगी। खाली दवाई की नॉलेज और बीमारी की नॉलेज नहीं है तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि कोई दवाई खाते रहे। तो ऐसे भी माया अनेक प्रकार से नए नए रूप में आती है, ब्राह्मण बनकर आएगी, माया बैस लगाकर भी आएगी, पता थोड़ा चलेगा। तो अनेक जो माया बहुरूपी बनकर आती है, ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी बहुरूपी हो, बहुरूपी बनकर माया को पहचानने की आंख भी हमेशा हमारी खुली रहे कि माया है या ये वास्तविकता है। तो तीसरी बात बताई कि पढ़ाई, पढ़ाई किस तरीके से पढ़नी है। मुरली में अनेक प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे माया, माया के बारे में क्या क्या कहा बाबा ने, अपने अलग अलग लिखे और फिर अपना चिंतन भी करो। माया फांसी लगा देती है, माया जमघट है, जमघटों की फांसी से बाप ही छुड़ाने आया हुआ है। लेकिन कितना एक सुंदर सेंटेंस था परसों के मुरली में माया के बारे में, अच्छे अच्छे बच्चे जो ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर मम्मा बाबा चलते थे, माया भी उनको लेके चलेगी, आज वो है नहीं। तो बताओ माया कितनी पावरफुल होगी। तो जो उस समय बाबा मम्मा के साथ रहते उन्हीं को माया लेके चली गई, तो हम है कौन से ऐसे थोड़े नहीं है, है? तो वास्तव में माया है क्या चीज है, माया अपने मन की कमजोरियां है, माया को बाहर से थोड़ा नहीं है, माया तो है ही नहीं है। ये तो बाबा ने हमें जो हमारे अंदर की कमजोरियां हैं उनको खत्म करने के लिए एक नया रूप दे दिया माया है, कि बच्चे डिसाइड ना हो जाएं। माया तो है क्या चीज है, अपने मन की सूक्ष्म कमजोरियां है ना, बहानेबाजियां ही है। तो पढ़ाई को नए नए तरीके से पढ़ना है, जो भी मुरली में कोई भी शब्द आता है जो हमारे मन को अच्छा लगे उसको पकड़ के उसका विस्तार करने का। जैसे ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई से क्या क्या फायदे हैं, जब से हमने इस ब्राह्मण जीवन में इस पढ़ाई को पढ़ना आरंभ किया है तो हमें इस जीवन में कौन कौन से फायदे हुए है? हम व्यर्थ से छूट गए, हमें क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितनी समझ मिल गई, हमारा जीवन ही बदल गया, हमारे संकल्प ही बदल गए। संकल्प क्या चीज होती थी पहले पता ही नहीं था, पहले तो संकल्प उसी को कहते थे जो तांबे का होता था डालने के लिए, ये थोड़ा पता विचार को भी संकल्प कहते है। तो कितना बदल गया, कितना हमारा परिवर्तन कर दिया बाबा ने, हमारे अंदर कोई ताकत थोड़ी नहीं थी। तो बाबा ने हमको एक ज्ञान का माजून खिलाया, हमारे कितने विचार श्रेष्ठ कर दिए, हमारी सोच ही बदल दी। तो कितना उपकार हुआ हमारे बाबा के, बाबा ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया, कितने उसके आशीर्वाद, उसकी कृपा है, उसकी कृपा तो है जो हम ये ज्ञान चर्चा कर पा रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई को नए नए तरीके से पढ़ना है, नए नए दृष्टिकोण से देखना है, अपना चिंतन करना, अपने पास लिख रखना और उसको बार बार दोहराना है। फिर बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो कर्म क्षेत्र पर आते क्या 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 सोचना है कि कर्ण करावन हार बाप करा रहा है, मैं तो निमित हूं। निमित भाव नहीं कहीं खो जाना चाहिए। निमित कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन कर्म कॉन्शियस हम इतना हो जाते हैं जैसे वो कर्म मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता है, उसमें हम इतना बंध जाते हैं। कर्म करते हुए समय भी बीच बीच में हमें स्मृति लेनी चाहिए, क्योंकि कई कर्म होते हैं उसमें पूरी बुद्धि लगानी पड़ती है, उसमें तो पूरा कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में बुद्धि लगाना जरूरी है, ये कौन सा कर्म कर रहा हूं, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, जो भी हमारे लौकिक कर्म भी है उनको वो भी अलौकिक ही है, वो भी तो हम हिसाब किताब चुक तो कर रहे हैं ना। तो कर्ण करावन हार की स्मृति हमेशा हमें रहेगी, तो हम कर्म करते भी हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे, फरिश्ता स्थिति में स्थित रहेंगे। तो ये हमको देखना है कर्म करते हुए बाबा ने कौन कौन सी स्मृतियां दी है जो हमको स्मृति में रखनी है। फिर कर्म करने के बाद और क्या होता है, फिर क्या करते हैं, फिर बीच बीच में थोड़ा खाली टाइम भी मिलता बहुत सारे दिन में, है ना। वो खाली टाइम को देखना पहले, हमको खाली टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, तो खाली टाइम के लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर युक्तियां बताई हैं। खाली टाइम में क्या होता है, संसार में अगर खाली टाइम किसी को मिल रहा है तो क्या होता है, कहाँ जाते हैं लोग आजकल, मोबाइल में, आजकल खाली कोई नहीं होता मोबाइल में, लेकिन मोबाइल में भी तो क्या करते हैं, फिर कोई वीडियो देखेगा, कोई बच्चे गेम खेलेंगे, कुछ करेंगे, उस चैटिंग करेंगे, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये अगर हमको खाली टाइम मिलता है तो क्या क्या करना है, तो उसमें बाबा कहते हैं अगर आपको सैर करनी है तो घुमा फिर आगे, बाबा को तो अपना काम कराना है, सीधी सी बात है। तो तीनों लोगों की सैर करो, देखना तो क्या देखो, स्वर्ग को देखो, बाबा को देखो, ये संगम युग को देखो, है ना। और सुनना है तो क्या सुनो, क्लासेस सुनो, है मुरली सुनो, कौन सी मुरली, कौन सी डेट वाली, अरे कोई सी डेट वाली जिसमें मन लग जाए, क्या आज संडे वाली, ठीक है संडे वाली मुरली, ऐसा नहीं छुट्टी होती है संडे को तो छुट्टी होती है ना, नहीं अच्छा ठीक है, तो यहाँ तो सदा ही छुट्टी होगी ना। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से क्या देखना है, स्वर्ग को देखो, संगमियो को देखो, है ना। और सुनना है तो बाबा के गाने सुनो, क्लासेस सुनो, मुरली सुनो, और हिस्ट्री जायोग्राफी पढ़नी है तो सारे सृष्टि चक्र की 5000 साल की हिस्ट्री जायोग्राफी पढ़ो। तो बाबा ऐसे अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। तो हमको खाली जो समय मिलता है उसमें हमको विशेष अटेंशन देना है। सामान्य रूप से तो हम सेवा में जो बिजी हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जहां खाली टाइम होता ना वहीं मन हमारा चंचल होता है, उसी टाइम पर हमको पहरा देना है, मन के ऊपर पहरा देना है, क्या कहां हमारा मन जा रहा है। और वास्तव में वही हमारी कमाई का विशेष समय होता है, क्योंकि जब हम कर्म क्षेत्र पर जा रहे हैं तो वहां तो बिजी हैं, वहां हमारी कर्मिंदियां इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब हमारा समय बिजी है, फ्री है थोड़ा, उसमें हम विशेष प्रसार कर सकते हैं, उसी समय हम अपने मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, उसी समय हम विशेष प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं जो अभ्यास हमको विशेष रूप से करना चाहिए। नहीं तो अंत में हमको यही संकल्प आएगा कि जो हम कर सकते थे और हमने नहीं किया तो हमको पछताना पड़ेगा, कि हमारे पास टाइम था और हम कर सकते थे, हमने नहीं किया, पछताना पड़ेगा। अभी अगर हम देखें अपनी इस पास्ट ब्राह्मण लाइफ में हमने कितना कितना समय गवा दिया और हम उसको सेव कर सकते थे, उसको सफल कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, तो उसका भी कितना पछताव होता, तो अंत में कितना पछताव होगा जब बाबा एक स्क्रीन पर दिखाएंगे, रील दिखाएंगे। तो सारे दिन में हमारा समय कहां कहां जा रहा है वो हमको जांच करनी है, है ना। उसी समय हम इतना सशक्त बना लेना है कि हमको किसी की बैसाखियों के सहारे की जरूरत ना पड़े, किसी के बार बार कंधे की जरूरत ना पड़े, कि हम किसी का हाथ पकड़ के चले, कोई हमारा पुरुषार्थ उसके साथ हमारा पुरुषार्थ हो। तो जो समय मिलता है उस समय में अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बहुत अटेंशन करने की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या आता है, रात को सोना। तो सोना, सोने के लिए बाबा ने क्या बोला हुआ है, पोता मेल दे दो और बाबा की गोदी में सो जाओ, लेकिन गोदी दिखती क्या, वहां तो खटिया दिखती है, दिखती है। लंबे समय की प्रैक्टिस होगी तो उसकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी, है ना। तो बाबा की गोद में सो जाओ, चार्ट देकर सो जाओ और अगले दिन के लिए बाबा से प्रेरणा लेकर, अर्थात सवेरे हमको अमृत वेले क्या करना है, पहले से वो संकल्पों का बीज बुद्धि रूपी भूमि में बो देंगे, मन रूपी बीज भूमि में, तो वो सवेरे अंकुरित होना अपने आप शुरू हो जाएगा। अगर हमने पहले से संकल्प नहीं डाले हैं तो सवेरे वो संकल्प तो पता नहीं है करने के हैं, पहले से तैयारी नहीं होगी तो करेंगे क्या। अगर बारिश पड़ गई है और बीज हमने रखा ही नहीं बोने के लिए तो वहां खेत में जाके करेंगे क्या। तो कमरे से उठ के तो आ गए बाबा के कमरे, तो पहुंच गए, हल चलाना शुरू कर दिया, लेकिन बीज है ही नहीं, तो फिर सारे दिन में फसल कहां जाएगी। तो संकल्पों के बीज सवेरे सवेरे यहां रोपित कर देने हैं ताकि वो सारे दिन में अंकुरित होकर फिर वो संकल्प वृक्ष बन जाए और वो हमें छाया भी दे, वो फल भी दे, वो संकल्पों के शुद्ध संकल्पों का हम मन में सवेरे सवेरे या रात को पहले से हमको क्या करना सवेरे सवेरे। इसलिए बाबा कहते रात को सोते समय थोड़े ज्ञान मनन चिंतन या थोड़ा मुरली के महावाक्य पढ़कर सोकर बाबा को गुण करेंगे तो सवेरे उठेंगे तो हमारे संकल्प भी वही चलेंगे, तो हमारी ब्राह्मण लाइफ जो है स्मूथ चलती रहेगी, सहज चलती रहेगी, है ना। तो ये कुछ एक चीजें थी जिनका हमको सारे दिन में ध्यान रखने के लिए बाबा ने अपने बताया हुआ सारा। वास्तव में इस ब्राह्मण जीवन में किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती है, सारा कुछ बाबा ने मुरली में बताया हुआ है। अगर हम किसी से पूछते हैं समाधान तो सिद्ध, हम तो यही सोचते हैं कि सिद्ध ये करता है कि हमको मुरलियों पर पूरा अटेंशन नहीं है, हर एक चीज बाबा ने मुरली में बताई है। अगर हम बड़ों से लेते भी हैं राय सलाह मशवरा तो बड़ों ने कहां से लिया हुआ है, तो उन्होंने कितना अटेंशन रखा होगा जो उनके मन बुद्धि में दूसरों को हाँ लेना तो चाहिए कहीं कहीं जहां जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे कि हर बार पड़े रहे पीछे पड़े रहे पीछे पड़े रहे। किसी के बाबा ने तो ये भी कहा हुआ है दूसरे का समय लेना भी अपने ऊपर बोझ चढ़ाना है। हम कितना समय ले रहे हैं आप दूसरे का, हमारे पास समय है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जो हम समय दूसरों का ले रहे हैं उसी समय हम अपना मन चिंतन करें, खोजें कुछ अव्यक्त वाणियां पढ़ें, मुरलियां पढ़ें, ज्ञानामृत है, अनेक प्रकार का लिटरेचर है उसको पढ़े, सारी समस्याओं का समाधान दिया हुआ है। तो एक कुछ एक चीजें थी जो हमको सारे दिन में अटेंशन रखनी है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, सवेरे अमृत वेले, फिर उसके बाद जो बाबा ने बताया कि स्नान पानी करते समय कैसे मूर्ति को सजाना है, फिर पढ़ाई पढ़ते समय, फिर सारे दिन में कर्म करते समय, रात को सोते समय, फिर सारे दिन में खाली समय जो मिलता है उसमें हमको क्या करना है, तो अपने आप को कुछ एक बातों में विशेषज्ञ बनाना है। बहुत सारे अभ्यास हैं। ओम शांति, 5 मिनट बाद में करेंगे चर्चा।
प्रभु का ध्यान कीजिए।
तो ये अगर हम सारा पुरुषार्थ करते हैं तो इसका परिणाम है कि योग में हमको नींद नहीं आएगी। अगर हमारा पुरुषार्थ यथार्थ है तो, अगर योग में हमको नींद आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा पुरुषार्थ यथार्थ नहीं है और विघ्न कम होते जाएंगे। अगर विघ्न आते हैं तो उनको टालने के लिए हमें तुरंत क्लिक होगा वो मेथड, हमको वो कोई ना कोई सूत्र हमारे हाथ में लग जाएगा, हम शायद उनसे क्रोध होते जाएंगे और बाबा की छत्रछाया का अनुभव होता रहेगा, ब्राह्मण परिवार से सहयोग मिलता रहेगा, हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव करेंगे, खुशी निरंतर जीवन में रहेगी। अगर हम ये सारा कर रहे हैं तो, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम जांच कर सकते हैं ये चीजें कम कम होंगी, ये कभी होंगी कहीं नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। इसलिए निरंतर इस पुरुषार्थ को हमको जीवन में करते रहना है तो ये निरंतर खुशी बने, खुशी सबसे बड़ा खजाना है। और ये खुशी का सारा, खुशी सहज थोड़ी आ जाएगी डायरेक्ट, बाबा बताया खुश रहता है ऐसे थोड़ा नहीं होगा, वो जो वो कहेगा वो तब करेंगे तभी तो खुश रहेंगे ना। तो ये सारी चीजें दिन में करनी है तो ये हमारी निरंतर खुशी बनी रहेगी। ठीक है, और किसी को प्रश्न, कौन सी विशेषता? हाँ हाँ, विशेषताएं जो है, विशेष अभ्यास की बात कर रहे थे ना, तो सारे दिन में कुछ एक विशेष अभ्यास होते हैं। जैसे जैसे सबसे पहले बताया अशरीरी अवस्था का अभ्यास, ये हम चलते फिरते भी करना है हमको विशेष रूप से। दूसरा बीज रूप अवस्था का अभ्यास। तीसरा जैसे माया साथ हमारे साथ कंबाइंड है ऐसे बाबा के साथ हमको कंबाइंड होना है। माया हमारे साथ कितनी कंबाइंड हो चुकी है, 63 जन्म से कंबाइंड है, लेकिन संगम का थोड़ा सा समय है तो बाबा का ज्ञान हमारे साथ जैसे चिपका रहे, बाबा के किसी न किसी रूप से, बाबा को किसी न किसी संबंध से हम उसके साथ मनन चिंतन रूरवान चलते रहे, तो ये अभ्यास करते रहे चलते फिरते। परम धाम घर में रहने का अभ्यास करना है, कितना समय में परम धाम में निराकार अवस्था में स्थित हो पाता हूँ। फिर निरंतर बाप की छत्रछाया का अभ्यास करना है, वो अभ्यास लंबे समय तक, जैसे परमात्म प्यार मुझ पर बरस रहा है और परमात्म शक्तियां बरसी, उन शक्तियों से मेरे जन्म जन्म के पाप कर्म खत्म होते जा रहे हैं, मैं निरंतर उसकी छत्रछाया में चल रहा हूँ, उसकी छत्रछाया जैसे मैं डबल लाइट हल्का फरिश्ता हूँ, देह से बिल्कुल डिटैच हूँ, अलग हूँ। तो ये अभ्यास निरंतर चलते फिरते कुछ एक ऐसे है जो खुद क्रिएट करने हैं, है ना। जैसे 10 अभ्यास कर लो, 11 कर लो, 21 कर लो और रोज उनको बार बार रिवाइज करना है, तो रिवाइज करते करते जब पक्के हो जाएंगे तो उनको सहज करना जाएगा, फिर चलते फिरते बैठते खाते पीते वो स्वतः स्मृति में आएंगे। फिर एक बार जो आदत पड़ जाती है तो वहां बार बार कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक बार रास्ते पर कदम चलने शुरू हो गए हमारे तो अपने आप चलते। तो उसी तरह से भी इस ज्ञान के मार्ग में, पुरुषार्थ के मार्ग में कुछ एक अभ्यास हमको सहज रूप से पक्का कर लेने हैं, है ना। निरंतर कैसे हम ज्ञान के मनन चिंतन में रहें, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें, बीज रूप स्थिति का अनुभव करें, बाबा से कंबाइंड है, उसकी छत्रछाया है, उसका प्यार मेरे पर बरसा है, मैं उसके नैनों में समाया हूँ, वो मेरे नैनों में समाया हूँ, वो मेरे दिल में है, मैं उसके दिल में हूँ, ऐसे अपने अपने ज्ञान का चिंतन करते रहने का। विशेषताओं से तो सब भरे हुए हैं क्योंकि जो उसके संस्कार है वही हम सबके संस्कार है। और प्रश्न? तो सदा प्रसन्न है जी, हाँ जी, श्वासोश्वास, हाँ श्वासोश्वास, अर्थात उसका अर्थ ये है कि हमारा पल पल जो है इतना कीमती है कि व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो याद ये नहीं कि बाबा को केवल याद कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान को याद करें तो वो भी बाबा को याद है। अगर हम सेवा में लगे हैं और सेवा भी इस स्मृति में रह के करें कि बाबा की सेवा है तो वो भी याद ही है। खाली याद ही नहीं कि खाली योग में बैठ के वो याद है। बाबा ने कहा अंतिम स्थिति है निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी, 24 घंटे के निरंतर सेवाधारी निरंतर योगी हो जाएंगे, वो अंतिम स्थिति है। लेकिन लंबे समय की प्रैक्टिस होगी, है ना। जैसे हमको सेंटर में कोई सेवा दी जाती है तो अगर हमको स्मृति है कि बाबा की सेवा में लगा हूं, चाहे हम कितना भी करें, चाहे 4 घंटे 6 घंटे या पूरा दिन सेवा कर रहे हैं, तो वो बाबा की सेवा स्मृति में रह रही है और हम निमित्त हैं उसमें, कोई अहम भाव नहीं हमें, तो वो भी हमारा याद और सेवा जुड़ी हुई है साथ में, है ना। जैसे टीचर होमवर्क देता है तो होमवर्क करते करते किसकी याद रहती है, टीचर की रहती है ना। तो उसी तरह जो हमको होमवर्क दे रहा है बाबा, अगर हम उसको करें तो उसकी याद है वो, हाँ परसेंटेज में होती है, क्योंकि कर्म करते अगर कर्म कॉन्शियस में हो जा रहे हैं तो वो शक्ति जो हम योग में प्राप्त करते हैं वो कर्म में हमको कम होती है। इसलिए बैठ के योग करना भी जरूरी है। इसलिए बाबा ने अमृत वेले कहा, अमृत वेले सबको फ्री है, अमृत वेले किसी को ऐसा नहीं कोई बहुत बिजी है, कम से कम आधा पौना घंटा बैठ के फुल चार्ज हो जाओ, आधा पौना घंटा भी बहुत होता है अगर यथार्थ योग लग जाए तो। आप अपने हाथ की उंगली केवल एक सेकंड बिजली के करंट में दे दो तो भूलेगा सारा दिन, फुल चार्ज रहेंगे कि नहीं, फिर दोबारा लगाएंगे भी नहीं उधर। तो ऐसे अगर बाबा से हम सवेरे फुल चार्ज हो गए तो वो स्वतः याद रहेगी। हाँ जी, हाँ, बिजली के करंट से सब दर्दे वर्दे खत्म हो जाएगी। तो याद तो वो सहज है, मुश्किल नहीं सोचना उसको, ठीक है। हाँ जी, हाँ, चलते फिरते शरीर लंबे समय का अभ्यास हम कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बाबा ने एग्जांपल भी दिए। तो समझना है कि ये देह मेरी कुटिया है, मैं इसके अंदर एक साधक बैठा हुआ हूँ, है ना। जैसे मेरी एक गाड़ी है, मैं ड्राइवर इसको चला रहा हूँ। जैसे मकान ये मालिक है, मैं इसका ये मकान है और मैं इसका मालिक हूँ। तो आत्मा से रिलेटेड, ये सांप है, मैं आत्मा मणि हूँ। तो ऐसे देह से रिलेटेड और आत्मा से, देह और आत्मा अलग अलग बाबा ने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, इनको हम बुद्धि में रखेंगे, चलते फिरते भी हम शरीर अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो दूसरे थोड़े आएंगे अभी, ठीक है। और प्रश्न, तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे पक्का, ठीक है। ओम शांति।